इस हफ्ते माइंड विद मसल पॉडकास्ट में क्वेश्चंस ऑफ द वीक आर, अगर एक बार हमारे मसल्स ग्रो हो गए हैं तो अगर हम डाइट एंड वर्कआउट छोड़ते हैं तो वापस से हम लूज क्यों कर जाते हैं, कटिंग के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, क्या मसल्स ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा बल्कअप होना जरूरी है, इंडियन कल्चर में ओमेगा 3 फिश ऑयल जैसी चीजें इस्तेमाल नहीं होती थी तो अभी हमें इनकी क्या जरूरत है, अगर कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने में दिक्कत आ रही हो तो क्या उसका कोई ऑल्टरनेट हमें ट्राई करना चाहिए, ऑल दिस एंड मच मोर in this week's episode of the Mind with Muscle podcast. वेलकम एवरीबॉडी, माइंड विद मसल पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. मेरा नाम है नवजोत सिंह और गाइज आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा फन होने वाला है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आप लोगों ने भेजे हैं और इसी सीरीज़ में पहला सवाल है विशाल सिंह का. विशाल सिंह ने इंस्टाग्राम पे हमें कॉन्टैक्ट करके यह सवाल किया है कि इन्होंने ट्रेनिंग विद नवजोत जो हमारी वर्कआउट सीरीज़ है उसको फॉलो करके थर्ड फेज़ में, जो उस वर्कआउट सीरीज़ का थर्ड फेज़ है उसमें इन्होंने 20 किलो के करीब करीब वेट लूज़ किया है, उसमें फैट भी है मसल भी है ये कहते हैं, और अब ये गेन करना चाहते हैं तो कौन सा शेड्यूल कौन सी डाइट किस तरह से ये फॉलो कर सकते हैं. तो देखिए विशाल जी और बाकी भी लोग जो कि इस तरह की सिचुएशन में है जिन्होंने वेट एंड मसल लूज़ किया है, अचानक से 20 किलो अगर आप लूज़ कर दोगे, जैसे कि जो ट्रेनिंग विद नवजोत का थर्ड फेज़ है उसकी ड्यूरेशन है 3 वीक्स, तो अगर आपने 3 हफ्तों में 20 किलो लूज़ कर दिया है तो ये बहुत ही गलत किया आपने. आप बहुत एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट में रहे होंगे तब आपने इतना वेट लूज़ किया है, जो कि कभी भी रेकमेंडेड नहीं है. अगर आपने वो वर्कआउट सीरीज़ अच्छे से फॉलो की होती, अच्छे से फॉलो करने का मेरा मतलब है कि जो वीडियोज़ हैं अगर उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन इंस्ट्रक्शंस को आपने सही तरह से फॉलो किया होता तो आप इतने बड़े कैलोरी के डेफिसिट में कभी भी नहीं जाते. मैंने कभी भी आपको एडवाइस नहीं किया कि आप बहुत ही एक्सट्रीम तरह के काम करो इस तरह के. जब भी आपने गेन करना है या कट करना है आपका सरप्लस या आपका जो डेफिसिट है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, बहुत स्मॉल. मैंने बार बार आपको समझाया हुआ है कि आपकी टोटल कैलोरीज जितना आप खाना खा रहे हो उसका अराउंड 8-10% आपने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है. सो सपोज करो कि आपने 2000 कैलोरीज से शुरुआत की थी बल्किंग की, तो आपने 2000 में सिर्फ उसका 10% यानी 200 कैलोरीज ऐड करनी है. एंड सेम थिंग इज़ ट्रू फॉर कटिंग एज वेल. अगर आप कटिंग करना चाहते हो तो आपने माइनस जब करना है तो भी आपने 8-10% का डेफिसिट क्रिएट करना है. जब आप ऐसा करते हो तो आपको तुरंत वेट स्केल के ऊपर वेट लॉस उतना ज़्यादा नहीं मिलता, जिसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मैं डेफिसिट में खा रहा हूँ लेकिन मेरा वेट नीचे नहीं जा रहा, तो शायद मुझे अपने डेफिसिट को बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो कैलोरीज को कम कम ज़्यादा ज़्यादा कम करते जाते हैं और इवेंचुअली इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मसल भी साथ में लूज़ कर जाते हैं. मैंने बहुत बार पहले भी आपको बताया हुआ है, दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि अगर वेट स्केल डेफिसिट क्रिएट करने के बावजूद इनिशियल हफ्तों में अगर आपका वेट डाउन नहीं जा रहा तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है. इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा बहुत मसल भी बिल्ड कर रहे हो या फिर एटलीस्ट जो मसल आपके पास है उसको मेंटेन कर रहे हो. इस वजह से आपका जो वेट स्केल में आपको वेट तेज़ी से नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है. तो वेट स्केल जो होता है वो बहुत बार अनट्रेंड लोग होते हैं उनको थोड़ा बहुत धोखा दे जाता है कि वेट स्केल के ऊपर आपका वेट नीचे नहीं जा रहा, तो आपको लगता है कि शायद मुझे तेज़ी से कैलोरीज को कम करने की ज़रूरत है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन अगर आपने ऐसा कर ही दिया है, सपोज़ कि आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी या फिर किसी और की गलत एडवाइस में आके बहुत एक्सट्रीम तरह की डाइट, आपने 1200-1500 कैलोरीज की डाइट फॉलो करके बहुत ही एक्सट्रीम तरह का वर्कआउट फॉलो करके आपने इस तरह की सिचुएशन में आप आ गए हो, तो दोबारा से आपने जब कैलोरीज़ को इनक्रीज़ करना है तो अगेन वही रूल आपके ऊपर दोबारा से लागू होगा कि आपने कैलोरीज़ को बहुत धीमे धीमे से इनक्रीज़ करना है. ठीक है, अगर सपोज़ करो कि आप 1500 कैलोरीज़ पे आ गए हो, आप कट करते करते 1500 कैलोरीज पे आ गए हो, तो आपने 100-150 कैलोरीज का सरप्लस क्रिएट करते हुए आपने मसल बिल्डिंग के ऊपर मेन फोकस रखना है. जो मेरी लास्ट वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि रिगार्डलेस कि आप फैट लॉस करना चाहते हो, मसल बिल्ड, स्ट्रेंथ बिल्ड, जो भी करना चाहते हो, आपने मसल बिल्ड करने की तरफ अपना मेन फोकस रखना है ताकि जब आप कटिंग भी करो तो एटलीस्ट आपके वर्कआउट्स आपको हेल्प करें. आप इस तरह से वर्कआउट करो कि आप ज़्यादा मसल लूज़ ना करो. तो अब जब आप सरप्लस में जाओगे, आप जब आप गेन करने की कोशिश करोगे तो अगेन ये आप दोबारा से ट्रिक मत हो जाना वेट स्केल की वजह से, कि वेट स्केल आपको तुरंत जल्दी से 1-2 हफ्ते के बाद मान लो कि वेट स्केल के ऊपर आपके नंबर्स ऊपर नहीं जा रहे तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए, दोबारा से बहुत सारी कैलोरीज आप इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दो, ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग, और घूम फिर के आप वापस से वहीं पहुंच जाओगे जहां पे आपने जहां से आपने शुरुआत की थी कटिंग की। मतलब कि मान लो कि आपने 20 किलो आप बोल रहे हो कि मैंने लूज़ किया है, मान के चलते हैं कि 20 किलो में 10 किलो फैट 10 किलो मसल आपने लूज़ किया है, लेकिन अगर आप ख़राब तरीके से वापस से गेनिंग करोगे ना तो अगेन आप 10 किलो मसल शायद हो सकता है कि गेन कर लो, लेकिन 10-12 किलो आप फैट भी गेन कर लोगे और आपका जो इतना सारा मेहनत थी वो बेकार चली जाएगी। जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पे आप घूम फिर के पहुंच जाओगे। तो ऐसा आपके साथ या फिर किसी के साथ भी ना हो, कभी भी बहुत बड़ा कैलोरिक डेफिसिट, कभी भी बहुत बड़ा कैलोरिक सरप्लस नहीं क्रिएट करना, और जो वर्कआउट शेड्यूल्स हैं वो आपके हमेशा मसल बिल्डिंग की तरफ ही टारगेटेड होने चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग विद नवजोत वर्कआउट सीरीज़ फॉलो करते हो तो वो जो सीरीज़ है पूरी की पूरी वो मसल बिल्डिंग की तरफ ही टारगेटेड है। तो आप जिस तरह से बताया गया है, वीडियोज़ ध्यान से देखिए, अगर आपने ऐसा काम किया है तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि आपने वीडियोस ध्यान से नहीं देखी, जिस तरह से बोला गया उस वर्कआउट में, उस तरह उस वर्कआउट सीरीज़ में वो काम आपने नहीं किया, आपने सिर्फ वर्कआउट्स जो मैंने जहाँ पे बताए हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आप सिर्फ वर्कआउट अंधाधुंध कर रहे हो, लेकिन जो बातें बोली गई हैं उन वीडियोज़ में वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, अगर आपने बातें ध्यान से सुनी होती तो ये काम आप कभी भी नहीं करते। तो एक एक वीडियो आराम से देखो, एक एक वीडियो देखने के बाद जिस तरह से बोला गया है उस तरह से आप अपने वर्कआउट्स करो, अब इसका यही इलाज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ग्रेट आतिश की तरफ से। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों के मन में शुरुआत में आते हैं जब वो जिम जाना स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया कि अगर हम सही तरह की डाइट फॉलो करके, सही तरह का वर्कआउट करके एक अच्छी फिजीक डेवलप कर लेते हैं, मसल मास ग्रो कर लेते हैं, तो जब हम ये चीज़ें छोड़ते हैं तो वापस से हम मसल को लूज़ क्यों करना शुरू कर देते हैं। देखिए इसके पीछे ना बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, और वो सिंपल सा रीज़न है कि आपकी बॉडी मसल को बिल्ड करेगी, मेंटेन करेगी या फिर लूज़ करेगी, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में उसको किस तरह का सिग्नल दे रहे हो, किस तरह का स्टिमुलस दे रहे हो। ये सिंपल सी चीज़ है, अगर आपकी बॉडी को वजह मिलेगी कि मुझे मसल मास होल्ड करके रखना है, मुझे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, सिर्फ तभी वो मसल को बचा के रखेगी या फिर बिल्ड करेगी, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में इस तरह के काम कर रहे हो, आप हैवी वज़न उठा रहे हो, तो आपकी बॉडी के पास वजह है उस मसल मास को कैरी करने के लिए। अब लूज़ क्यों करते हैं हम, देखिए ये बात समझिए कि जो मसल है ना ये बहुत ही एक एक्सपेंसिव सा टिश्यू है। एक्सपेंसिव मीनिंग कि आपकी बॉडी को, आपकी मसल को मेंटेन और बिल्ड या मेंटेन करने के लिए ना काफ़ी सारी कैलोरीज़ को खर्च करना पड़ता है, और कैलोरीज़ जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस मानती है हमारी बॉडी, कि हमें कैलोरीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए कभी भी, क्योंकि ये सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। अगर हम आप इमेजिन करो ना कि आप जंगल में रह रहे हो और आपको खाना इतना ईजीली नहीं मिल रहा, तो हमारी बॉडी के लिए ये एडवांटेजियस है कि वो कैलोरीज़ के साथ एफिशिएंट बने, कैलोरीज़ को बहुत ही सोच समझ के खर्च करे, ठीक है ना। तो आज के टाइम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे हम जो चाहे खा सकते हैं, जब दिल करे खा सकते हैं, लेकिन हम एज ह्यूमंस इस तरह से इवॉल्व हुए हैं कि हमारी बॉडी ना कैलोरीज़ को, मतलब कैलोरीज़ के साथ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होके इवॉल्व हुई है। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ लगती हैं, हमारी बॉडी उस काम में उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट करने की कोशिश करती रहती है। तो अगर हमें मसल की ज़रूरत नहीं है, अगर हम कोई वजह ही नहीं दे रहे हैं कि हमें मसल की ज़रूरत है, तो हमारी बॉडी के लिए ये फ़ायदे की बात है कि उस चीज़ को, इन दिस केस मसल को लूज़ करके कैलोरीज़ को बचाने की कोशिश करें, समझे इस बात को। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ जिसका कि कोई पर्पस नहीं है, हम डे टू डे लाइफ में अगर कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसमें हमें मसल की ताकत की, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो ये कोई सेंस नहीं बनती बॉडी के लिए कि ऐसी चीज़ को वो कैरी करे और उसको मतलब मेंटेन करने के लिए बहुत सारी कैलोरीज़ को खर्च करे। तो कैलोरीज़ को बचाने के लिए और जो भी आप काम कर रहे हो उसके साथ और ज़्यादा एफिशिएंट बनने के लिए बॉडी जो है वो मसल को पेयर डाउन कर देती है। सो दिस इज़ द रीज़न, जो मेन रीज़न है पीछे कि आपकी बॉडी क्यों मसल को लूज़ कर देती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आपको अगर लगातार मसल मास बनाए रखना है अपने शरीर के ऊपर, तो आपको आपकी बॉडी को वजह देनी पड़ेगी, और वो वजह हम देते हैं जिम जाके हैवी वज़न उठा के। हमारी बॉडी को लगता है कि हमें हैवी वज़न उठाने की ज़रूरत है, तो हमें स्ट्रेंथ एंड मसल की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल जी पूछते हैं, कटिंग के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कटिंग या फैट लॉस के लिए आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स एंड सप्लीमेंट स्टैक्स बेचते हुए आपको लोग दिख जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई सप्लीमेंट मेरी नज़र में नहीं है जो कि डायरेक्टली आपकी फ़ैट को लूज़ कर दे, मतलब आप खाएं और आपकी फ़ैट लूज़ होना स्टार्ट हो जाए। कुछ सप्लीमेंट्स जो बिकते भी हैं फैट बर्नर के नाम पे या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें बिकती भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें उनमें ज़्यादातर स्टिमुलस होते हैं, जैसे कैफीन होती है बहुत ज़्यादा, जो कि आपको उत्तेजित करती है वर्कआउट करने के लिए। तो इवेंचुअली जो आपको फैट लॉस इफेक्ट देखने को मिलता है वो मिलेगा वर्कआउट की वजह से ही, लेकिन वो वर्कआउट करने में आपको पंप दे सकता है कोई सप्लीमेंट, मतलब कि आप इस तरह की मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन में आ सकते हो कि आपका वर्कआउट करने को दिल करे। तो इस तरह के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली आपकी फैट नहीं लूज़ कर रहे, लेकिन कोई सप्लीमेंट अगर आपको जिम लेके जा रहा है, सपोज करो कि आप बहुत ज़्यादा पहले सुस्ती सी फील कर रहे थे, आप लेथार्जिक फील कर रहे थे, लेकिन कोई सप्लीमेंट लेने से आपका दिल कर रहा है वर्क उसमें जिम जाने में और वर्कआउट करने में, तो उस सप्लीमेंट का यूज़ और उस सप्लीमेंट का बेनिफिट सिर्फ इतना है कि वो आपको जिम लेके गया और वर्कआउट आपसे करवाया उस सप्लीमेंट ने, इससे ज़्यादा उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। जो फैट लॉस होगा, जो मसल बिल्ड होगा, वो आपके वर्कआउट से ही होगा। तो अगर मैं आपको कहूँ कि कोई सप्लीमेंट डायरेक्टली आपको फैट लॉस में हेल्प करता है, तो उसका आंसर है नो, नहीं करता है। आपका वर्कआउट एंड आपकी जो डाइट है वही आपको आपका फैट लॉस करवाएगी, और उसी के ऊपर आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैक्श अंडरस्कोर निनावे अंडरस्कोर कहते हैं, पूछते हैं, ये इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, ये पूछते हैं कि इज़ इट नेसेसरी टू बल्क अप जस्ट टू ग्रो मसल्स। इनके क्वेश्चन का मतलब जो मुझे समझ में आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक भी किया है कि हमें क्या बहुत सारा खाना खा के बहुत ज़्यादा बल्की होने की ज़रूरत होती है मसल्स को ग्रो करने के लिए। तो उसका आंसर है नहीं। आमतौर पे लोगों के दिमाग में जिस तरह से कटिंग को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा फैट लॉस करना है तो हमें बहुत ही एक्सट्रीम तरह की डाइट्स फॉलो करनी पड़ेंगी, उसी का ऑपोजिट एंड ये भी है। जो लोग स्किनी होते हैं, जो मसल गेन करना चाहते हैं, उनके दिमाग में होता है कि जितना ज़्यादा वो ठूंस ठूंस के खाएंगे, जितना ज़्यादा वो बल्कि होंगे, उतना ज़्यादा शायद उनको मसल ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका गोल मसल गेन करना है तो मसल गेनिंग के लिए आपको बहुत बड़े सरप्लस की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने आपको बार बार पहले भी बोला हुआ है कि बल्कअप करने के लिए आपको बहुत बड़े सरप्लस की ज़रूरत नहीं होती। ओके, इस चीज़ को समझिए। अगेन, जितना आप खा रहे हो उसमें आप अगर 8-10% का इंक्रीज़ करोगे, सरप्लस में लाओगे अपने आप को, तो उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और इस सरप्लस को ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो सरप्लस है ना, ये हमेशा के लिए आपका नहीं चलेगा। धीरे धीरे करके आपकी बॉडी अडेप्ट होती है, और जो नई कैलोरीज हैं आपकी, जितना आप खाना खा रहे हो वो ही आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज इवेंचुअली बन जाता है। तो करना क्या, आपने के दो दो तीन तीन हफ्ते के इंटरवल में आपने 10-10% का इंक्रीज़ आपने करना है। यही चीज़ रिवर्स में भी ट्रू है। आपने जो डेफिसिट क्रिएट करना है वो 8-10% का, मैंने जो पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, डेफिसिट आपने क्रिएट तो करना है, लेकिन दो तीन हफ्ते के बाद वो डेफिसिट आपने रिपीट भी करना है। तो दो दो तीन तीन हफ्ते के इंटरवल में आपने 10-10% जो आपकी टोटल कैलोरीज तब आप खा रहे होगे, उसका 10-10% या तो इंक्रीज़ करना होता है या फिर डिक्रीज़ करना होता है। ये बेस्ट अप्रोच है नेचुरल लिफ्टर्स जो हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते और आप, जैसे आपने, आपका क्वेश्चन है कि आप बल्क करना चाहते हो अगर, तो आप जो मुंह में आता है, जो हाथ में आता है वो खा लेते हो, बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा फैट गेन कर लेते हो, तो इवेंचुअली आप इस पोजीशन में पहुंच जाओगे जहां पे आपने अगर 20 किलो वज़न गेन कर भी लिया है, उसमें से आपका 6-7 किलो मसल होगा और उसमें आपका 12-13 किलो फैट होगा। और फिर आपके दिमाग में आएगा कि यार मुझे शायद फ़ैट कटिंग करने की ज़रूरत है। और जब आप इसी तरह से कटिंग करने की कोशिश करोगे तो आप फैट भी लूज़ करोगे, साथ में मसल भी लूज़ करोगे, और घूम घुमा के वहीं पे पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरुआत की थी। तो ऐसी पोजीशन में, ऐसी सिचुएशन में आप मत पड़ो। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दो, स्मॉल सरप्लस या स्मॉल डेफिसिट में रह के काम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आशुतोष जी पूछते हैं, अपने इंडियन कल्चर में ओमेगा 3 या फिश ऑयल और फ्लैक्सीड का यूज़ नहीं होता था, फिर भी तो हम लोग हेल्दी रहते थे, लेकिन क्या ये ओमेगा 3 लेना ज़रूरी है एक नॉर्मल पर्सन के लिए जिसको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है? आशुतोष जी, कोई भी सप्लीमेंट, चाहे वो ओमेगा 3 फिश ऑयल है, चाहे वो मल्टी विटामिन्स हैं, चाहे वो प्रोटीन है, कार्ब्स, कुछ भी है, उसकी ज़रूरत आप लोगों को है या नहीं, ये आपके कल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कल्चर में, जैसे मैं पंजाबी फैमिली में से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे कल्चर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे दूध, दही, इस तरह की चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, मीट भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, तो इस हिसाब से हमें प्रोटीन की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे पंजाबियों को मैं आपको मिला दूंगा जो देखने में ही आपको लग जाएगा कि इनके खाने में प्रोटीन की कमी है। तो डिपेंड करता है कि आपको पर्सनली, आपको किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं है। ओके, अगर कल्चर एंड ट्रेडिशन की हम लोग बात करें, तो अगर आपके जो पिछली वाली पीढ़ियां थी उनको ओमेगा 3 फिश ऑयल की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ी, और आपकी डाइट और उनकी डाइट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, तो हो सकता है कि आपको ओमेगा 3 फिश ऑयल की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इसका मतलब जनरलाइज हम लोग नहीं कर सकते। ये जो चीज़ें होती हैं ये स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से होती हैं। अगर आपको ज़रूरत है, सिंपल सी बात है, अगर आपको ज़रूरत है तो आपको ज़रूरत है, अगर नहीं है तो नहीं है, सिंपल। सियांडे 1994, मेरे ख्याल से मैंने इनका नाम सही से नहीं लिया, लेकिन ये पूछते हैं कि कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उस मसल के लिए कोई और अल्टरनेट एक्सरसाइज हम कर सकते हैं उसकी जगह पे? तो उसका आंसर है येस एंड नो। येस इसलिए क्योंकि अगर आप इस कंडीशन में हैं कि कोई एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, आपको कोई मेडिकल इशू है, कोई जॉइंट रिलेटेड इशू है कि कोई एक्सरसाइज आप कर ही नहीं सकते, तो श्योर आपको कोई और अल्टरनेट एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो येस आप उसका अल्टरनेट यूज़ कर सकते हो, उस एक्सरसाइज का कोई और वर्जन यूज़ कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर जो लोग जिम जाते हैं वो अगर कोई एक्सरसाइज करने में उनको दिक्कत आती है तो वो करते ही नहीं है, ये बहाना बन जाता है कि मुझसे तो लगती ही नहीं है ये चीज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को, अगर आपसे स्क्वाट नहीं लगती तो लोग लगाते नहीं है, लेग प्रेस पे रहते हैं या फिर जो कर्ल्स एंड एक्सटेंशन वगैरह होती हैं वो यूज़ करते रहते हैं, ये गलत बात है मेरे ख्याल से। अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो, अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है और आपसे कोई एक्सरसाइज लगाने में दिक्कत आ रही है, तो ये आपकी बॉडी का आपको बताने का तरीका है कि इस तरह की मूवमेंट में आपको ज़्यादा बेटर होने की ज़रूरत है। तो करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में, आपको रीज़न पहले तो फिगर आउट करना चाहिए कि अगर मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ तो उसका रीज़न क्या है, क्या मेरे जॉइंट में कोई स्टिफनेस टाइटनेस इस तरह की प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको फिक्स करना चाहिए, अगर स्ट्रेंथ रिलेटेड कोई इशू है जो बैलेंसिंग मसल्स होते हैं अगर उनमें कोई इशू है तो वो उस चीज़ को फिक्स करना चाहिए। किस तरह से फिक्स करना है ये डिपेंड करता है कि किस तरह के बंदे को किस तरह की दिक्कत है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको कोई एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको उसी एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और उसका रीज़न है कि आपकी ग्रोथ भी उसी एक्सरसाइज में छिपी रहती है। आमतौर पे हम लोग जिस तरह की एक्सरसाइज करना हमें सही लगता है, अच्छा लगता है, हम अच्छा फील करते हैं, वो वाली एक्सरसाइज हम लोग करते रहते हैं और हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, और उसका सिंपल सा रीज़न है कि हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है, हम ईजीली वो एक्सरसाइज कर पाते हैं। जब तक हम अपनी बॉडी को चैलेंज नहीं करते तब तक हमारी ग्रोथ नहीं होती जिम में, इस बात को ध्यान में रखिए। कोई भी एक्सरसाइज लगाने में दिक्कत आ रही है तो दिक्कत की वजह पता कीजिए, जॉइंट रिलेटेड इशू है या फिर कोई और इशू है उसको फिक्स कीजिए एंड उस एक्सरसाइज में बेहतर होने की कोशिश कीजिए। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको जिम में उन्हीं एक्सरसाइज को करने से मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक। अगर आप भी चाहते हो कि आपका कोई क्वेश्चन मैं इस पॉडकास्ट में आंसर करूं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम में जाके सर्च बॉक्स में माइंड विद मसल जब आप टाइप करोगे तो आप मुझे ढूंढ लोगे। हर वेडनेसडे के वेडनेसडे जब मैं पॉडकास्ट से रिलेटेड पोस्ट करता हूं तो उसके नीचे आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट पे ये एपिसोड सुन रहे हो तो 5-स्टार रिव्यू देके फ्री ऑफ कॉस्ट इस पॉडकास्ट को सपोर्ट भी कर सकते हो। फ्री वर्कआउट प्रोग्राम्स, बहुत सारे वर्कआउट टिप्स एंड ट्रिक्स, फ्री डाइट स्ट्रेटजीज के बारे में और जानना चाहते हो तो माइंड विद मसल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। मजे करो, स्टे फिट स्टे स्ट्रांग। यू बी लिसनिंग टू द माइंड विद मसल पॉडकास्ट।